3 सितंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। म्यांमार में रॉयटर्स के दो पत्रकारों को 7 साल की सजा।
Today's verdict is very disappointing. It's bad for our country, Myanmar. It's bad for democracy. It's bad for the rule of law.
नजर डालेंगे पंजाब में किसानों की खुदकुशी और खेती से जुड़े मुद्दों के अनछुए पहलुओं पर।
खुदकुशियां दे रहे तुर्गे प्योते पुत कुड़े।
फार्म सेक्टर से जो शुद्ध इनकम होना है फार्मर को वो कम हो रही है ईयर बाई ईयर बिकॉज इनपुट कॉस्ट एंड आउटपुट कॉस्ट है जो ये एग्रीकल्चर के पक्ष में नहीं है।
आपके पत्रों के उत्तर तो होंगे ही, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। म्यांमार में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के दो पत्रकारों को 7 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी रिहाई की मांग की गई है। राष्ट्रीय गोपनीयता कानून उल्लंघन के लिए वालोन और क्यो सोए ओ को दोषी ठहराए जाने पर फ्रांस ने कहा है कि यह कानूनी शासन के लिए गंभीर झटका है। अमरीका ने इसे परेशान करने वाला बताया है। वहीं ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन समेत अन्य मानवाधिकार समूहों ने फैसले की आलोचना की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अफ्रीका को अतिरिक्त $60 अरब की सहायता राशि देने की पेशकश की है। वो बीजिंग में चीन अफ्रीका सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। अफ्रीका में चीनी निवेश का राष्ट्रपति शी ने बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं के तार राजनीति से नहीं जुड़े हैं। आलोचकों का कहना है कि बड़ी विकास परियोजनाओं में चीन के निवेश से अफ्रीकी देश उसके कर्ज तले दब जाएंगे। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि ये निवेश पारस्परिक लाभ के लिए है। हम अफ्रीका के साथ अपने संबंधों में 5 दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित पर अफ्रीकी देशों के विकास के पथ पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं होगा। अफ्रीकी देशों पर हमारा धन थोपा नहीं जाएगा। ये थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि सीरियाई प्रांत इडलिब को साफ होना चाहिए। उन्होंने इससे पहले इसका आतंकियों के रूप में वर्णन किया था। अपने दमिश्क दौरे से पहले जरीफ ने कहा क्षेत्र को सीरियाई सरकार के नियंत्रण में आना चाहिए। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ यहां विद्रोहियों की बड़ी मौजूदगी है और ईरान के समर्थन वाली उनकी सेना आगे बढ़ी है। इडलिब में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है और संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि कोई भी हमला लाखों आम लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रीय संग्रहालय में भयंकर आग लगने से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेयर ने इसे 200 साल पुराने काम और शोध के लिए गहरा नुकसान बताया है। इस संग्रहालय में 2 करोड़ कलाकृतियां थीं, जिसमें अमेरिका में खोजा गया सबसे पुराना मानवावशेष भी था। रियो में मौजूद एक जीव विज्ञानी मार्कस मूरा ने कहा,
When I first interested on biology, I was living near the museum.
जीव विज्ञान में जब पहली बार मेरी रुचि पैदा हुई तो मैं संग्रहालय के नज़दीक ही रहता था और मुझे कीड़ों की एक बड़ी संख्या देखने की सुविधा यहाँ हासिल थी। वो जगह मेरे खेल का मैदान थी और मैं वहाँ हर दिन जाता था। ये थे एक जीव विज्ञानी के शब्द। थाईलैंड के उच्च पुलिस प्रशिक्षण स्कूल ने कहा है कि वो अगले साल से महिलाओं को भर्ती नहीं करेगा। इस घोषणा के बाद मानवाधिकार समूह लैंगिक समानता को नज़रअंदाज करने को लेकर आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और यौन हिंसा जैसे मामलों की जांच पर प्रभाव पड़ेगा। 100 साल पहले स्थापित की गई रॉयल पुलिस कैडेट अकेडमी ने केवल 1 दशक पहले ही महिला आवेदकों को स्वीकार करना शुरू किया था। ये अभी तक साफ नहीं है कि इस फैसले को क्यों पलटा गया। हाल के आम चुनाव के बाद इराक में 2 बड़े राजनीतिक गठबंधन संसद के पहले सत्र में बहुमत साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। एक गठबंधन की अध्यक्षता प्रमुख धार्मिक नेता मुक्तदा अल सद्र और वर्तमान प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी कर रहे हैं। उनको पश्चिमी शक्तियों का करीबी समझा जाता है। दूसरा गठबंधन ईरान के करीबी सहयोगी समझा जा रहा है, जिसका नेतृत्व मिलिशिया कमांडर हादी अल अमेरी और पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी कर रहे हैं। दोनों ही गठबंधन कह रहे हैं कि सत्र में पड़ने वाले वोटों से का बहुमत साबित होगा। शरण पाने में असमर्थ रहे एक शख्स को अपनी 15 वर्षीय महिला मित्र की हत्या के जुर्म में जर्मनी में 8 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। म्यांमार में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के दो पत्रकारों को राष्ट्रीय गोपनीयता कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इन पत्रकारों पर आरोप थे कि इनके पास सरकारी गोपनीय दस्तावेज थे। वहीं पत्रकारों का आरोप है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सैन्य हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे थे और उन्हें पुलिस ने फंसाया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए मोहम्मद शाहिद से।
म्यांमार की एक अदालत ने राष्ट्रीय गोपनीयता कानून के उल्लंघन में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के दो पत्रकारों को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। 32 वर्षीय वालोन और 28 वर्षीय क्या सोएओ म्यांमार के नागरिक हैं और उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास कुछ आधिकारिक दस्तावेज थे जो उन्हें पुलिस अधिकारियों ने दिए थे। दोनों पत्रकारों का कहना है कि उन्हें पुलिस ने फंसाया है। वालोन ने कहा है कि उन्हें कोई डर नहीं है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इससे हमारे लोकतंत्र और देश की स्वतंत्रता को सीधे चुनौती दी जा रही है। हम शांति से इस स्थिति का सामना करेंगे और अपील की कोशिश करेंगे। हमें कोई डर नहीं है, हम अपनी बड़ी कोशिश करने जा रहे हैं। ये थे पत्रकार वालोन के शब्द। वहीं यंगून में रॉयटर्स के एशिया के क्षेत्रीय संपादक केविन क्रोलिकी ने बीबीसी से कहा है कि वो इस फैसले से बहुत निराश हैं।
This is a deeply disappointing result. Nothing at trial justifies the verdict.
ये निराशाजनक परिणाम है। अदालत ने जो आज फैसला सुनाया वो पूरे मामले की सुनवाई से उचित नहीं लगता है। रॉयटर्स के रूप में ये मायूस करने वाला है। ये हमारे सहकर्मियों, दोस्तों और वालोन के परिवारजनों का दिल तोड़ने वाला है। जो इस फैसले से प्रभावित हैं वो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। ये थे रॉयटर्स के एशिया क्षेत्रीय संपादक केविन क्रोलिकी के शब्द। दोनों पत्रकार दिसंबर 2017 से पुलिस हिरासत में थे। ये दोनों सितंबर 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत के इन दिन गांव में सेना द्वारा मारे गए 10 रोहिंग्या पुरुषों के मामले में सबूत इकट्ठा कर रहे थे। दोनों को दो पुलिसकर्मियों ने कुछ दस्तावेज सौंपे थे जिनके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पत्रकारों में से एक के वकील खिन मोंग जो ने अदालत के फैसले की आलोचना की है। आज का फैसला निराश करने वाला है। ये हमारे देश म्यांमार के लिए बुरा है, लोकतंत्र के लिए बुरा है, ये कानूनी शासन के लिए बुरा है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए बुरा है। हम बेहद निराश हैं और इस फैसले से किसी को भी लाभ नहीं होगा। ये थे पत्रकारों के एक वकील के शब्द। दोनों पत्रकारों की रिपोर्ट को असाधारण माना गया था क्योंकि इसमें बौद्ध लोगों समेत कई लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या की और उनके घरों को जलाया। साथ ही नरसंहार के लिए अर्धसैनिक बलों ने सेना की ओर भी इशारा किया था। बाद में सेना ने जांच की और खुद को निर्दोष बताया। हालांकि प्रशासन ने जांच के बाद कहा था कि उसे नरसंहार के सबूत मिले हैं और वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
म्यांमार में दो पत्रकारों को 7 साल की सजा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ खबरें भारत से। केरल में रैट फीवर के सैकड़ों मामले सामने आने के बाद खबर है कि इस बीमारी से कम 39 लोगों की मौत हो गई है। केरल हाल ही में भीषण बाढ़ का शिकार हुआ था, उसके बाद से ही इस बीमारी ने सिर उठाया है। राज्य सरकार ने इसके लिए चेतावनी जारी की है लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि राज्य के 14 में से सिर्फ 5 जिले ही इस बीमारी की गिरफ्त में हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
अगर आपका कोई जान पहचान केरला में है और उनको थोड़ा सा बुखार और आंग में दर्द है तो उनको फौरन डॉक्टर के पास जाने के लिए कहिए। ये सलाह केरला के स्वास्थ्य अधिकारी हर किसी को दे रहे हैं। कारण वही है जिसका कि इलाके के स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टरों को संदेह था। केरला के स्वास्थ्य सचिव और आपार मुख्य सचिव राजीव सदानंद ने बीबीसी को बताया। पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये सलाह हम आम जनता को दे रहे हैं ताकि ये व्यापक रोग न बन जाए। तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि जब आप बाढ़ में फंसे ही थे तो ये जरूरी हो जाता है कि आप डॉक्सीसिलिन दवाई फौरन लें। ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी है। ये थे राजीव सदानंदन के शब्द। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सारे दवाइयों को इकट्ठा कर लिया गया है और प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। रेड अलर्ट इसलिए दिया गया है ताकि ये बीमारी और फैल न जाए। अभी तक लिप्टोस्पिरोसिस या चूहा बुखार केरला के 14 जिलों में से 5 जिलों में ज्यादा से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वो जिले हैं त्रिशूर, पालक्काड, कोड़िकोड, मलप्पुरम और कन्नूर। केरला के प्लानिंग बोर्ड के सदस्य डॉक्टर इकबाल बाबू कुंजू ने कहा,
आफ्टर द फ्लड वी एक्सपेक्ट थ्री मेजर थ्री अपसर्ज ऑफ डिसीज़, थ्री ग्रुप।
हमें पता था कि इस तरह की बीमारियां बाढ़ के बाद उभरेंगी। ये बीमारियां ज्यादातर गंदे पानी की वजह से आती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड इत्यादि। उनके अलावा चूहा बुखार भी आता है। जाहिर है कि जब लोग राहत शिविरों से वापस अपने घर जाते हैं तो इस तरह की बीमारी सामने आती हैं। ये थे डॉक्टर इकबाल बाबू कुंजू के शब्द। केरला की बाढ़ में पिछले महीने करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
उत्तराखंड में मसूरी के नजदीक कैंपटी फॉल्स घूमने गए पर्यटकों के लिए रविवार की शाम उस वक्त बेहद खौफनाक हो गई जब अचानक इस झरने में बाढ़ आ गई। झरने का जल स्तर अचानक बढ़ जाने से झरने के आसपास अफरा तफरी मच गई और 80 से अधिक पर्यटक यहां फंस गए। तकरीबन 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन पर्यटकों को निकाला जा सका। एक रिपोर्ट के साथ हैं रोहित जोशी।
कैंपटी फॉल के पास ही एक रेस्तरां चलाने वाले सुरेश सजवान ने यह वीडियो बीबीसी से साझा किया है। रविवार की शाम बनाए गए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैंपटी फॉल से तेजी से गिर रहा मटमैला पानी चारों ओर फैलता जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल है। सुरेश सजवान इस मंजर के बारे में बताते हैं।
ये जो झरना दिख रहा है कल काफी भयानक रूप इन्होंने ले रखा था और ये जो नीचे में एक ग्रीन हवा घर टाइप का जो दिख रहा है ये पानी वहाँ से कल सीढ़ियों से नीचे निकल गया। कल इसी तरह से जो है बहुत सारा पानी बढ़ा और ये रास्ते से नीचे चल गया, जिसके कारण कम से कम 100 टूरिस्ट जो है नीचे फंस गए और छोटी छोटी दुकानें काफ़ी थी नीचे और जो है काफ़ी नुकसान हुआ है दुकानों को, काफ़ी दुकानें।
रविवार की शाम छुट्टी मनाने कैंपटी फॉल पहुंचे पर्यटकों और स्थानीय दुकानदारों के लिए एक खौफनाक अनुभव बन गई। कैंपटी फॉल्स के ऊपर वाले झरने का पानी निचले झरने के रास्ते में आ गया, जिससे 80 से अधिक पर्यटक और दुकानदार नीचे फंस गए। इस बाढ़ में अपने परिवार के साथ तकरीबन 2 घंटे फंसे रहे एक पर्यटक ने पत्रकारों को बताया,
जैसे ही बारिश रुकी हम लोग वहाँ पे गए और हमारी फैमिली के कुछ 6-7 मेंबर्स थे। After about 5 to 10 minutes, that thing, you know, started. हमें ये पता लग गया कि ये कुछ होने वाला है। एकदम उनसे पानी आ गया, उसका फ्लो इतना तेज था कि ऐसे लगा कि 5-7 मिनट में सारा तहस नहस हो जाएगा। हम लोग सब लोग बहुत बहुत घबरा गए।
स्थानीय दुकानदारों और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया था, जिसके चलते सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। टिहरी जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बीबीसी को बताया है कि इस घटना के बाद ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक तेज बरसात के दौरान लोगों को कैंपटी फॉल्स और ऐसी दूसरी संवेदनशील जगहों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
हमने कल इवनिंग में जो है ऑर्डर बनाया था, हम पे जो है एक तो ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि अगर वहाँ पे हैवी रेन होता है तो तुरंत वहाँ पे जो है पुलिस फोर्स या आपका होमगार्ड या एसटीआरएफ या रेवेन्यू का आदमी या पीआरडी का आदमी वहाँ पे जस्ट वहाँ पे जो है आप उसको तैनात कर देंगे, उसको वहाँ पे डिपूट कर देंगे, वो वहाँ पे जो लोगों के जाने से स्ट्रिक्टली रोक लेगा, कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, पर्यटक टूरिस्ट ट्रैवलर जो भी है।
उधर सोमवार को उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में एक ट्रैवलर बस तकरीबन 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने खास तौर पर नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर SC/ST एक्ट के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके रथ पर पत्थर फेंके गए और एक अन्य स्थान पर उन पर चप्पल भी फेंकी गई। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस की हरकत बताया है। शूर्य नियासी की रिपोर्ट।
SC/ST एक्ट को लेकर मध्य प्रदेश में लोग अब सड़कों पर खुलकर अपना विरोध जता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। चुरहट पहुंचने पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए और उनके रथ पर रविवार रात को पत्थरों से हमला किया गया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन रथ के कांच टूट गए। इसके बाद देर रात सीधी जिले में एक जनसभा के दौरान उन पर चप्पल फेंकी गई। चप्पल उन्हें नहीं लगी, लेकिन फौरन उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें घेर लिया। शिवराज सिंह चौहान ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है और चुनौती दी है कि उनसे सामने से आकर लड़ें।
चोरी छुपे पत्थर फेंकवाने वालों, ये परिपक्वता की राजनीति नहीं है, ये बचकाना हरकत है। बचकाना हरकत जो मध्य प्रदेश और चुरहट की शिवराज का क्या बिगड़ेगा रे, मेरी तो नजर और उतर जाएगी। मध्यप्रदेश का यही होगा।
चुरहट नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री का आशय यही था कि इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ही जिम्मेदार हैं। इसलिए भाजपा दावा कर रही है कि इस सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में भाजपा के नेताओं को SC/ST एक्ट की वजह से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह नेताओं को घेरा जा रहा है और उनसे इस मामले पर सवाल किए जा रहे हैं। शुरहनिया, ZBBC न्यूज, भोपाल।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। हरित क्रांति के दौरान देश में मुनाफेदार खेती के महानायक के तौर पर उभरे पंजाब में आज हर 8 घंटों में कर्ज के बोझ तले दबा एक किसान आत्महत्या करता है। पर इन मौतों के बाद शुरू होने वाली पीड़ित परिवारों की नई त्रासदी अक्सर आंकड़ों के किसी पहाड़ में खो जाती है। कृषि संकट से जुड़ी जमीनी पड़तालों की इस विशेष सीरीज में BBC किसानों की खुदकुशी और खेती से जुड़े मुद्दों के अनछुए पहलुओं को श्रोताओं के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में सुनिए पंजाब, मनसा और बरनाला जिलों से BBC संवाददाता प्रियंका दुबे की ये पहली रिपोर्ट।
खुद खुशियां दे रहे तुरगे प्यो ते पुत कुड़े, पुत जिन्ना दे मर गए गबरू अन्नियां हो गईयां मामा, पुत जिन्ना दे मर गए गबरू अन्नियां हो गईयां मामा।
उम्र के 50वें पड़ाव पर अकेली खड़ी बलदेव कौर अक्सर अपने पति, जवान बेटे और भाई की मौत का मरसिया पढ़ती हैं। कर्ज और बदहाली की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए तीनों ने खुदकुशी कर ली थी। मनसा जिले के भमेकला गांव में धान रोपते खेती और मजदूरों के बीच खड़ी बलदेव कौर ने पड़ोसियों से अपने दिल का हाल कहते कहते अपनों की मौत पर गीत बना लिए। ये गीत अब स्थानीय किसानों के प्रदर्शनों में जनगीत की तरह गाए जाते हैं।
तेरी आई मैं क्यों ना मर जावा वे वीरा, ओ पैणा दा की ज्योणा जिन्ना दे वीर नहीं।
बलदेव कौर पंजाब की उन हजारों महिलाओं में शामिल हैं जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य ने खेती में हो रहे नुकसान और कर्ज की वजह से खुदकुशी कर ली। दक्षिण पंजाब के बरनाला, मनसा और संगरूर जिलों के तमाम गांवों में कर्ज, बदहाली और खुदकुशी की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। स्लेटी रंग की मैली सलवार कमीज पहने हरपाल कौर अपने घर के आंगन में भैंसों को सानी पानी दे रही हैं। बरनाला जिले के भुटाना गांव में यह एक उदास शाम है। हरपाल की जिंदगी की तरह ही उनकी घर की दीवारें भी बदरंग हैं। बीती 3 पीढ़ियों के दौरान हरपाल के परिवार के 4 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। पति के दादा, चाचा, फिर हरपाल कौर के ससुर और इस साल की शुरुआत में उनके पति ने भी अपनी जान दे दी।
पहला जी साढ़े घर साढ़ा दाद सौरा सिया जी, उन्हें आपका शोषण किया।
हमारे घर में ऐसा होता रहा है। खुदकुशी से कुछ दिन पहले सबका व्यवहार बदल जाता है। आत्महत्या से पहले मेरे पति भी कर्जे के चलते टेंशन में रहते और रोते रहते थे। अब मुझे अपने बच्चों की शादियां करने में दिक्कत हो रही है। कोई हमारे यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहता। सब कहते हैं कि यहाँ तो मौतों का सिलसिला है। पड़ोसियों को लगता है कि हमारे घर में कुछ जादू टोना किया हुआ है। अपने रिश्तेदार तक घर नहीं आते, अब सिर्फ घर में औरतें ही बची हैं। बिना आदमी के पंजाब के इस गांव में जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
हरे भरे खेतों और खलिहानों के लिए मशहूर पंजाब में अब परिवार ध्वस्त हो गए हैं। किसी गांव में लोग रिश्ता करने नहीं आते तो कई महिलाएं घर छोड़कर जा चुकी हैं। कई गांव में घर के मर्द खेती किसानी के साथ साथ बच्चों को भी संभालते हैं। बरनाला जिले के बद्रा गांव में पिछले 15 सालों से अपने बड़े भाई के दो बच्चों को अकेले बड़ा कर रहे 45 साल के गुरतेज दास एक धूल भरे घर में रहते हैं। गुरतेज के परिवार में कोई महिला नहीं है। बड़े भाई ने कर्ज की वजह से कीटनाशक दवा पीकर खुदकुशी कर ली। परिवार गरीबी के दलदल में धस गया और किसान की बजाय एक खेतीहर मजदूर परिवार में बदल गया। भाई की मौत के बाद उनकी पत्नी से गुरतेज की शादी करवा दी गई थी, पर पत्नी भी अचानक एक दिन उन्हें और बच्चों को छोड़कर चली गई।
जब बच्चों की माँ गई तब छोटा वाला तो सिर्फ 6 साल का था। रात में कभी भी उठकर रोने लगता तो मैं भी उठता और जो कुछ होता उसे बनाकर खिला देता। बीच बीच में बच्चों को कभी बुखार हो जाता तो कभी कोई दूसरी बीमारी। उनको पालना और खेती एक साथ करना मुश्किल था, इसलिए मैंने खेती छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा प्यार बंट जाएगा।
खुशहाली का प्रतीक पंजाब आखिर इस मुकाम पर कैसे पहुंचा, जहां घरों में मौत की उदासी छाई रहती है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुखपाल सिंह पिछले कई वर्षों से पंजाब के किसानों के हालात का अध्ययन कर रहे हैं। वे कहते हैं कॉरपोरेट कंपनियों ने खेती के औजार और बीजों को किसान की पहुंच से बाहर कर दिया है।
जो प्रॉफिटेबिलिटी है फार्मिंग सेक्टर से जो शुद्ध इनकम होना है फार्मर को, वो कम हो रही है ईयर बाई ईयर, बिकॉज इनपुट कॉस्ट एंड आउटपुट कॉस्ट है जो हमारी जो है ये एग्रीकल्चर के पक्ष में नहीं है, इसीलिए फार्म प्रॉफिटेबिलिटी है जो कम हो रही है। जो जैसे खेती के इनपुट्स हैं, खाद है, पेस्टिसाइड है, इरीगेशन का स्ट्रक्चर है, तेल है, डीजल है, मशीनरी है जैसे ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, सब मशीनरी, इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए इन कंपेरिजन टू जो किसान की फसल है उसका रेट इनपुट से ज्यादा बढ़े हैं।
बढ़ती आत्महत्याओं के अध्ययन के लिए बनी अलग अलग सरकारी कमेटियों ने अपनी सिफारिशें तो दे दी हैं, पर उन पर ठोस कार्यवाही होना अभी बाकी है। किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं इस बात की पुष्टि करती है कि किसान बाजार के यथार्थ का सामना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसानों की खुदकुशी के बाद शुरू होने वाली इन परिवारों की लंबी तनावपूर्ण और अकेली लड़ाइयों पर समाज के साथ साथ सरकार की नजर भी नहीं जाती, जबकि अवसाद के बारूद पर बैठे ये परिवार हर पल एक नई त्रासदी के कगार पर खड़े रहते हैं।
सुते पियानू माना जर्दी उठ पुत्रा दूध प्यामा।
पंजाब के मनसा बरनाला जिलों से प्रियंका दुबे, BBC।
चक काल जे लामा तलिया उत्ते चोग च गाऊं।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का।
आपकी राय, नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और साथ में
इंदु पांडे का भी
नमस्कार। चिट्ठियां आज नहीं है, अफसोस की बात यह है क्योंकि डाकखाना बंद है, आज जन्माष्टमी की छुट्टी है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे।
तो पहला मेल है नरसिंह बहादुर सिंह का, शास्त्री नगर मेरठ से। लिखते हैं कि वर्षों पहले जब उद्घोषक BBC हिंदी का पता बुश हाउस लंदन बताते थे और सभी कार्यक्रम वहीं से प्रसारित होते थे, तो ऐसे में आपके समाचारों के प्रसारण और विश्लेषण में यूरोपीय और विशेषकर ब्रिटिश उदारता का पुट होना स्वाभाविक था। पर अब जब सारा प्रसारण भारत में दिल्ली से हो रहा है, जहां शायद उदारता के मूल्य उतने गहन नहीं है, तब BBC हिंदी किस तरह उन्हीं पुराने मूल्यों पर चल पा रही है? तो ये उत्कंठा, इन्होंने कहा है कि मेरी ये उत्कंठा राजेश जोशी द्वारा तारिक फतेह और जुबैर अहमद द्वारा RSS नेता इंद्रेश कुमार के साक्षात्कार को सुनकर उत्पन्न हुई।
जी, ये लगता है कि ये इंटरव्यू जो हमने प्रसारित किए थे नरसिंह बहादुर सिंह ने अब सुने हैं, अब क्योंकि हालांकि इनको बहुत समय हो गया है, मुझे लगता है तारिक फतेह का जो इंटरव्यू हमने किया था 2 साल हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि BBC के मूल्य बदले नहीं हैं, बीबीसी की उदारता बदली नहीं है, पत्रकारिता का धर्म जो बुश हाउस में हम लोग निभाते थे वही पत्रकारिता का धर्म हम लोग दिल्ली में भी निभाते हैं। और वो धर्म ये होता है कि आप जनता की तरफ से सवाल करते हैं, जनता के दिमाग में जो सवाल होते हैं, जो उत्कंठा होती है, जो जानने की लालसा होती है, उसको हम स्वर देते हैं। और इसमें हम ये ध्यान नहीं रखते कि कौन कितना बड़ा आदमी है, कौन कितना छोटा आदमी है। बड़ा और छोटा हमारे नज़दीक नहीं होता है, यही मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। उम्मीद है आप इसी नज़रिए से हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और हमें अपनी राय से अवगत भी हमेशा कराते रहेंगे।
और ये दूसरा ईमेल हमारे पास आया है विक्रम चतुर्वेदी का, इन्होंने लिखा है करीन मध्य प्रदेश से, और ये हिंदी रेडियो बीबीसी का सुनते हुए बड़े हुए क्योंकि इनके पिताजी सुनते थे, और इनको लगता है कि एक इन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 95% नंबर लिए हैं, जो शायद बीबीसी की वजह से हुआ है।
95% नंबर इनके आए सामान्य ज्ञान में और ये बीबीसी के श्रोता हैं।
जी
बहुत, तो बस बहुत, इनकी कितनी खुशी की बात है इंदु जी कि हम लोग जो करते हैं उसका सही मायने में फायदा बहुत सारे श्रोताओं को मिलता है।
तो इनकी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ आप पूरी कर
दें। बताइए।
ये कहते हैं कि आप मेरे पिताजी का नाम अनाउंस कर दें।
अच्छा, इन्होंने लिखा है ये सिर्फ बीबीसी हिंदी रेडियो के कारण संभव हुआ। आगे लिखते हैं, इस पत्र के साथ ही मेरे पिताजी का नाम भी प्रसारित करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो विक्रम चतुर्वेदी के पिताजी का नाम है सुशील कुमार चतुर्वेदी। तो विक्रम जी, आपके पिताजी ने सुन लिया होगा और उनको खुशी भी हुई होगी।
और हमारे पास अगला मेल आया है गणेश प्रसाद हजदार का, लिखते हैं कि रेहान फजल साहब द्वारा प्रस्तुत विवेचना में बादशाह शाहजहां और मुमताज की बेटी जहांआरा के बारे में तफसील से सुनने को मिला, लेकिन जहांआरा की जोड़ी के लिए कोई योग्य शख्सियत न मिलने से उन्हें जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़ा, इस बात से बहुत दुखी है।
देखिए, इतिहास जो है वो विडंबनाओं से भरा हुआ है गणेश प्रसाद जी, और आपकी शिकायत भी ये रहती है कि हम आपकी चिट्ठियां शामिल नहीं करते, तो आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल तो शामिल हो गया, लेकिन ये जो विवेचना रेहान साहब ने की जहांआरा पे, इस पर और भी बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं। इंदु जी, क्या कुछ और भी आप देख सकती हैं?
जी हाँ, बहुत सारे मेल आए हैं, जिनमें से एक है कुरुक्षेत्र के विकास शर्मा, लिखते हैं कि इस बार की विवेचना एक गुज़िश्ता दौर में ले गई हमारे इतिहास की एक बड़ी अहम कड़ी को, इसी बारीक नज़र से हम देख सके।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, उन श्रोताओं का जिन्हें ये विवेचना पसंद आई।
और मनोज खाली लिखते हैं कि राजेश जोशी जी, मोदी जी का विरोध और कांग्रेस का पुनर्जन्म या आदर्श आपके प्रिय विषय रहे हैं, प्रभाष जोशी जी की तरह आप भी मानते हैं क्या?
प्रभाष जोशी मेरे संपादक रहे, प्रभास जोशी की लेखनी का मैं कायल हूं। मेरी बहुत सारी पसंद और नापसंद निजी हो सकती है, लेकिन जहां तक पत्रकारिता का सवाल है तो कोई निजी पसंद या निजी नापसंद नहीं है। हाँ, एक पत्रकार होने के नाते जो भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, फैसले होते हैं, उन पर एक कमेंट हम लोगों को करना होता है, विश्लेषण करना होता है, उसके सही और उजले और सियाह पक्ष को सामने रखना पड़ता है। वो काम शायद हम ईमानदारी से कर पाएं, यही कोशिश रहती है, लेकिन अब ये कोशिश जो है चलते चलते पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और खेल के मैदान से एक संक्षिप्त में खबर यह है कि इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। भारत के साथ सीरीज खत्म होने के बाद वो इस फैसले को अमल में लाएंगे। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। म्यांमार में रॉयटर्स समाचार एजेंसी के दो पत्रकारों को 7 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी रिहाई की मांग की गई है। राष्ट्रीय गोपनीयता कानून उल्लंघन के लिए वालोन और क्यो सोए ओ को दोषी ठहराए जाने पर फ्रांस ने कहा है कि यह कानूनी शासन के लिए गंभीर झटका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अफ्रीका को अतिरिक्त $60 अरब की सहायता राशि देने की पेशकश की है। वो बीजिंग में चीन अफ्रीका सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि सीरियाई प्रांत इडलिब को साफ होना चाहिए। उन्होंने इससे पहले इसको आतंकियों के रूप में वर्णन किया था। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रीय संग्रहालय में भयंकर आग लगने से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेयर ने इसे 200 साल पुराने काम और शोध के लिए गहरा नुकसान बताया है। थाईलैंड के उच्च पुलिस प्रशिक्षण स्कूल ने कहा है कि वो अगले साल से महिलाओं को भर्ती नहीं करेगा। इस घोषणा के बाद मानवाधिकार समूह लैंगिक समानता को नजरअंदाज करने को लेकर आलोचना कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।